कृपया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय यं प्राप्यजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायुरकातरया पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेयो तं सर्वभूतहृदयं त्वयैवास्मि त्वयैवास्मि न जुहामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं न मां चरणं। मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सात श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि सष्टांग गंगति प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में भी कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात हम लोग रामानंद संवाद में इधर आएंगे। रामानंद जी ने बतलाया ब्रजवनिताओं का गोपियों का प्रेम की साधनसार है। महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए और महाप्रभु जी ने कुछ और कहने के लिए कहा तो रामानंद जी बतला रहे हैं कृष्ण प्राप्ति उपाय बहुविध है। कृष्ण प्राप्ति तात्पर्य बहुत आचर कृष्ण प्राप्ति के बहुत से तारतम्य हैं। कोई भी साधन के द्वारा कृष्ण को प्राप्त करता है किंतु सब प्राप्त करना एक समान नहीं होता। जैसे ब्रह्मवादी लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और सुख स्वरूप में उनकी ब्रह्म रूप में प्राप्ति करते हैं। क्यों? इसलिए प्राप्ति करते हैं कि कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है जो हमारा जो जिस प्रकार से भजन करेगा हम उसी रूप में उसका प्रतिदान देंगे। इसलिए यदि वो कृष्ण को ब्रह्म के रूप में ही उपासना करते हैं तो वो कृष्ण ही कोई प्रकारांतर में प्राप्त करते हैं किंतु उनकी अनुभूति को भगवान नष्ट कर देते हैं और नष्ट करके ये उनके अंदर में बैठा देते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं और मैं ब्रह्म सुख स्वरूप। जो लोग ऐश्वर्य मार्ग से भक्ति करते हैं वो उनकी गति वैकुंठ में देते हैं। वैकुंठाधिपति नारायण भी अलग नहीं है, वो कृष्ण ही है। उसका अतिरिक्त और भी प्रेमी भक्त हो हनुमान जैसे तो जैसी आराधना करते हैं, उनको अयोध्या धाम में, साकेत धाम में राम के रूप में मिलते हैं। और भी ऐश्वर्य और माधुर्य कुछ कुछ यदि हो तो द्वारका और मथुरा में भी मिलते हैं। इसके अतिरिक्त भी शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधु, ये पांचों रस के सेवक लोग कृष्ण के ही सेवक हैं, किंतु सबकी प्राप्ति एक समान नहीं है। उस प्राप्ति में तारतम्य है, उनकी ममता में तारतम्य। यशोदा के ममत्व के संबंध में, सखाओं के ममत्व के संबंध में मैंने बतलाया, इनको कृष्ण ही प्राप्त होते हैं, किंतु होने पर भी सबके कृष्ण एक नहीं है, उसमें कुछ अंतर है। गोपियां भी कृष्ण को माधुर्य रूप में प्राप्त करती हैं, किंतु गोपियां कितनी प्रकार की है, करोड़ों प्रकार की, तो सबका कृष्ण की प्राप्ति एक ही समान होता है। ऊपर से मालूम पड़ता है कि एक ही भाव गोपी भाव से, किंतु गोपियों के प्रेम के और ममत्व के तारतम्य से कृष्ण की प्राप्ति में भी तारतम्य है। तो इसीलिए कह रहे हैं, जैसे चंद्रावली कृष्ण को प्राप्त करती है, राधा जी भी प्राप्त होती हैं, दोनों में एक ही भाव है। राधा जी में मधुर स्नेह है और चंद्रावली में भीत स्नेह है, और उससे ही वैसी रति उनकी बनती है, वैसे उनके भाव, महाभाव और आगे की स्थितियां बनती है। इसलिए चंद्रावली का मिलन और राधा जी का मिलन एक नहीं है, वैसे ललिता, विशाखा इत्यादि को भी समझ लेना चाहिए। इसलिए कहते हैं कृष्ण प्राप्ति तारतम्य बहुत अच्छा, एक ही कृष्ण को सभी प्राप्त कर रहे हैं, किंतु उनके प्राप्ति में तारतम्य है, ममता में तारतम्य होने के वजह से, सेवा की वासना में तारतम्य होने से। जैसे उनकी सेवा की वासना होगी उतने ही उनकी ममता अधिक होगी। सब यदि ललिता विशाखा कृष्ण विरह में राधा जी को समझा रही है तो समझाने की स्थिति में है, पागल वो नहीं हो गई, इसलिए राधा जी से उनका कम है जो राधा जी को समझा रहे हैं। इसी तरह से तारतम्य को अच्छी तरह से समझना चाहिए। किंतु जा जय रस से ही सर्वोत्तम, यहां तक जो मैंने बतलाया, ब्रह्मवादी अपने सुख को सर्वोत्तम मानते हैं, अपने रस को, ब्रह्मवादी भी जो कृष्ण को पा लिया है, वो देखते हैं कि मैं ब्रह्म को सुख स्वरूप दर्शन कर, मैं सुख स्वरूप हूं, ब्रह्म सुख स्वरूप है। लक्ष्मी नारायण की उपासना करने वाले परव्योमी के जो भक्त हैं वो अपने को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। उसी प्रकार से शांत, दास, सख्य, वात्सल्य और मधुर रस वाले भक्त जो जिसमें आविष्ट और सिद्ध हो चुका है उसी को ही, उससे वो आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे यशोदा मैया, वो उनका पुत्र है, लाल पाल्य है, इसे अतिरिक्त और आगे नहीं बढ़ेगी, गोपियों जैसे नहीं होगी, वो अपने रस को ही सर्वश्रेष्ठ समझती हैं, वो दूसरे रस में जाना नहीं चाहते। हनुमान दिन रात सेवा करते हैं अपने रस को, पांडवों जैसे नहीं हो सकते, किंतु जिस रस में है, पांडव आने पर भी, गरुड़ आने पर भी, हनुमान जी द्वारका नहीं जाएंगे, कृष्ण के कहने पर ध्वजा में केवल रह सकते हैं, पृथक रूप में जाकर के उनकी सेवा करेंगे ऐसा संभव नहीं है। एक समय किसी कारण से कृष्ण ने गरुड़ को भेजा, जाओ कृष्ण बुला रहे हैं तुम्हें द्वारका में, और ये किम पुरुष में थे, राम राम मंत्र जप रहे थे, बड़े प्रेम से रो भी रहे थे। तो गरुड़ को भेजा तो उन्होंने कहा जब अभी हम नहीं आए, इनकार कर दिया। तब कृष्ण ने कहा रुक्मिणी तुम तुम सीता बन जाओ और मैं राम बन जाता हूं। और गरुड़ जी को कहा जे जाओ उनसे कहो जे राम बुला रहे हैं। झट हो गए और उन्होंने कहा जे आपको राम बुला रहे हैं। कहां? द्वारका में। हनुमान जी ने कहा जे हमारे पीठ पर चढ़ाओ। कहा जे पीठ पर चढ़ने नहीं, मैं अभी आ रहा हूं, चलिए। तो वो गरुड़ जी चले और उनसे पहले पहुंच गए और राम सीता को प्रणाम करके जब रास्ते में आ रहे थे तो पीछे से गरुड़ जी मिले। एक निष्ठा है, इसलिए अपने इष्ट देव में हनुमान जैसे निष्ठा होनी चाहिए, गोपियों जैसी निष्ठा होनी चाहिए। ऐसी निष्ठा नहीं होने से भगवत भक्ति की कमी है। ततस्त हैया आछे तर्तम, जो जिस रस में है उसी को सर्वोत्तम मान करके उसको वो छोड़ना नहीं चाहता, उसी रस में भगवान की सेवा करना चाहता है। किंतु ततस्थ होकर के विचार करने में कुछ तात्पर्य। ततस्थ माने क्या? सबको एक बराबर समझने वाला, ततस्थ होकर के। ततस्थ माने तट के ऊपर में खड़ा होकर के, किसी एक में नहीं रहे, न्यूट्रल रूप में रहे। तो उसके लिए तारतम्य है। कैसे तारतम्य है? जैसे श्रीमद् भागवत, इसमें सुखदेव गोस्वामी ने प्रारंभ से प्रथम स्कंद से ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश महाराज अजामिल उपाख्यान दुर्वासा और अम्बरीश और इसके बाद में कृष्ण लीला का वर्णन किया। कृष्ण लीला में प्रथम जन्म में वात्सल्य रस का वर्णन किया, इसके बाद में पौ गंड रस में सखाओं के साथ में रस का वर्णन किया, और ऊपर चलते हैं तो वात्सल्य रस का दामबंधन इत्यादि लीला करते हैं, और ऊपर जब चलते हैं तो तासाम आविर्भूत सौरी स्मान मय मुखांबुजा पीताम्बर धर सर्व साक्षात मन मत मन, गोपियों के सामने मन मत कृष्ण और गोपी भाव में आविष्ट हो गए। वहां पर गोपियों की प्रतिष्ठा की, उनका महात्मा वर्णन किया, ततस्थ होकर के वर्णन किया। यदि वे गोपी भाव में रहते सब समय तब उनके लिए वर्णन करना असंभव था, ये ध्रुव प्रहलाद और ये सब का चल। पूर्व पूर्व जथा जथोत्तरम असौ स्वाद विशेष उल्लासमयपि रतिर वासनाया स्वाद्वि भासते क्वापि कचित। उल्लासमय रति एक दूसरी से पहले के अपेक्षा दूसरी को श्रेष्ठ बतलाते हैं। उल्लासमय रति, रति की वासना से जैसे उसकी रति होती है वैसे ही वासनीय होती है। कैसे? इसी को बतला रहे हैं। पूर्वे पूर्वे रसेर गुण परे परे हो, एक दुई गणने पंच पर्यंत बढ़ गुणाधक स्वादाधिक बाढ़े प्रति रसे शांत दास सक वात्सल्य गुण मधुर एते वैसे। you should, it will be very long, you should do. Then I will. After him, this should be
good. See, Rama Lata gave the suggestion to Sri Chaitanya Mahaprabhu that the love of Vrajavanita, gopis of Vrindavan, this is Prema Sahitya Sai, the essence of all objectives or within the subject matter of praying. When Mahaprabhu heard this, he was delighted. But still, he said, Agnikirvan, can you go further and explain more? So we should understand that there are many methods to attain Krishna. But the attainment of Krishna which comes by following those many methods is not the same. Some do sadhana, and by their sadhana they attain Krishna. For example, those who are Brahmavadis, they do upasana of Krishna, and they attain Brahma Sukha, the happiness of Brahman realization, because Krishna has promised, Yaya Tamam Prapadyante Tams Tataiva Vajamyaham. In whichever way the living entity approaches me, I will reciprocate with their desires. So for them, Krishna manifests within their hearts as Nirvishesh Brahma. Similarly, those who worship Sri Krishna on Aishwarya Marg, the path of devotional service, full of the mood of awe and reverence and knowledge of Krishna's Bhagavata, His godliness, they attain Vaikuntha Pati Narayan. Lord Narayan, the Lord of Vaikuntha, He is none other than Krishna, He is Krishna Himself. But Krishna manifests in that form to reciprocate with them. Hanuman, he renders service in a particular way so that very same Krishna appears to him in Sankirtan Ayodhya in the form of Lord Ramachandra. Doka is superior, Mathura is even higher than that. And within Vrindavan, those who worship in Dasa, Sakya, Vatsala and Madhurya, they all have varying degrees of mamata, possessiveness for Krishna. And therefore, their attainment of Krishna is also full of varieties. Everyone's Krishna is not the same. There is some speciality in the Krishna that they attain. So those who have gopi praying, also, this gopi's love is of many varieties. And therefore, their attainments of Krishna are also, they vary accordingly. For example, Sri Chandravali and Srimati Radhika, they both attain Krishna, but their praying is different. Srimati Radhika has madhusneha, the affection which is like honey. And Chandravali's affection is grintasneha. It resembles the qualities of ghee. So therefore, when they meet with Krishna, their Krishna Lila is quite distinct, different from each other's attainments. So there is only one Krishna, and that one Krishna is attained by all persons from top to bottom. But the type of attainment they get depends on their celebrity, their tendency to serve, and the intensity of their mamata. The Brahmavadis, they consider their own happiness important. So Krishna manifests to them in the form of the Sukh Swarup, the embodiment of happiness, only Brahma Sukh. Now, of those who want to serve Krishna in the neutral mood, servitor's mood, friendship mood, parents' mood, or lover's mood, in whatever mood they are absorbed, they feel personally that that mood is the best. Mother Yashoda, she nourishes Krishna and takes care of him. She thinks that this mood is the best, and that mood will not progress to anything higher. Srila Gurudev gave an example. Once Krishna, in Dwarka, he sent Garuda to call Hanuman and tell him to come there. But when Garuda went there, Hanuman did not respond, he did not come. So Krishna, he told Rukmini, "Oh Rukmini Devi, you should assume the form of Sita, and I will assume the form of Ram." And then Krishna told Garuda, "Tell Hanuman that Lord Ram is calling him." So Garuda went there and he formed Hanuman. So then Garuda, he was going back to Dwarka. But what happened? Hanuman went so quickly to Dwarka. He gave his pranam to Sita and Ram. And then when Garuda was on his way back, Hanuman was already returning. He went there so quickly. So, this example is given to show there must be nishtha in one mood, complete dedication and steadiness to one particular relationship. Otherwise, bhakti is deficient. So, having discussed this point thoroughly, Gurudev gave the conclusion that every associate of the Supreme Personality of Godhead feels that his own particular position is best. But if we will analyze all the different types of praying from tatastha vichara, tat means the shore. Stop. Being situated on the shore, in other words, being situated on a neutral point. And then from that neutral point, we look at all the different varieties of praying, we'll see that there are gradations of superiority. Srila Gurudev gave an example of what it means to be situated on tatastha, from looking from a neutral standpoint. The example is that when Shukadeva Goswami was speaking Srimad Bhagavatam, from the beginning, from the very beginning, he discussed the life history of Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, Acharya, the pastimes of Amrish Maharaj and Durvasa Rishi. And then he began the 10th canto of Srimad Bhagavatam. So first he described Krishna's Balya Lila, his childhood pastimes, and the Vatsali Bhav, parental mood of Madhya Yashoda. Then he described, as Krishna became older, his not baby pastimes, infant pastimes, but his childhood pastimes, that's called Pavanda Lila. And there he glorified the service of the Sakras, Krishna's friends. And then, when Krishna was doing his Kisha Lila, he met with the gopis of Vrindavan. At that time, we see when Shukadeva Goswami described the pastimes of Krishna with the gopis, he said, Tasa Mavira Shori, indicating that he was now absorbed in the mood of the gopis. He became completely absorbed in their mood, Sakshat Manmata Manmata, and he described Krishna's beauty in their assembly. So, Srila Gurudev gave the conclusion that at that point, Shukadeva Goswami became absorbed in Gopi Bhava. But if he had been absorbed in that mood from the beginning, it would not have been possible for him to explain Dhruv Charitra, Prahlad Charitra, Ambarish Charitra, and all the other things that he discussed in the previous 9 cantos. So, to summarize this point, Srila Raya Ananda, he quoted a verse from Bhakti Rasamrita Sindhu,
An appeal.
And also an appeal. We have a very successful parikrama. Srila Guru was commenting, only one very sad incident happened the other day, yesterday. You've all heard about our dear Garshunda Parikshari, how we met with very unfortunate situation yesterday. And he's in hospital at the moment in Bhubaneswar.
Why not louder?
Just now, Shravan Prabhu has come from Bhubaneswar. And Goswami Prabhu is asking all of us to please forgive him for any offenses that he has made to us. Also, he is only requesting us to all pray for his spiritual benefit. He is in a very serious condition, and tomorrow or day after they will operate him in order to give relief to his situation. Some discs have been damaged, some paralysis is there, and at the moment he has weight on his
on the traction.
Yeah, doctors are waiting till there is enough situation is favorable to put a plate in his neck, in order to support the skull so that he will not have so much pain. He will be in this condition for at least 1 month, if not longer. And after that, Sri Gurudev is praying and also commenting that he should be all right, and we also pray like that.
He must be all right, but it will take time.
So operation will be either tomorrow or day after, and we would like to appeal to all the devotees. Altogether, it will cost about 1 lakh Indian rupees. If any one of you feels that they can contribute to this, please be so kind and help. You can give your contribution to Puttipad Malak Maharaj, to Sri Gurudev directly, or to Shravan Kumar Prabhu, Vijay Prabhu, can you stand up from Malaysia? Vijay Prabhu is there. He will also receive contributions. Dr. Param Parmeshwar Prabhu from Malaysia, who is himself an expert
doctor,
surgeon and doctor, and who knows exactly how to deal with this situation, he will be there. He went also yesterday with Goswami Prabhu and helped so much. Again, he is on his way now to be with him and help him to get relief from any difficulties. Yeah. So please again, if you want to help, especially pray, all of us, we can pray for the spiritual well-being and the physical well-being of our dear Goswami Prabhu.
He is a very sincere and qualified boy in all respect. So we will try to expend as much as money for him needed. So I request you, Apeleo, to also help me to protect Sevi. Finished? But if you want to help, you should help here, giving here, Madhava Maharaj or him or anyone. If they can give now, otherwise from their place they can give. Today, tomorrow. ठीक है ठीक है बहुत वेरी गुड थैंक यू ओके वेरी गुड एज मच नीडेड वी विल हेल्प But also, huh? Huh? Click or go? Manjari?
Raman Roy.
Very good.
Also,
कोई गाया नहीं ना कुछ किया अरे तुम बंगला एक बताओ हाँ बंगला बंगला करो यही एक आदमी ऊपर चले जाओ One person can go upside. Hey, तुमरा वसूल करता है ना एग्जाम? One should.
Upstairs. Suvarna Prabhu.
Second is Suvarna.
You can go around.
Oh, go. Oh. Very good.
किचन के गए
थे. Count it.
किचन के गए ना नहीं.
अब तुमको तैयार होने में 15 घंटा लगता है कोई एक बंगला पद गाओ तो अच्छा सा
Oh.
Thank you. বলে দিব সকলকে। তো বতলা রে রাধা রামানন্দ জি আকাশাদি গুণ যেন পর পর ভূতে আকাশ বায়ু অগ্নি জল ও পৃথিবী ये পাঁচ তত্ত্ব হ্যাঁ আকাশ কা গুণ শব্দ হ্যাঁ ये বায়ু মে ভী হ্যাঁ और वायु का अपना एक गुण है स्पर्श इसलिए दो गुण हो गए स्पर्श और सब और अग्नि में ये तीनों गुण है स्पर्श भी है शब्द भी है और अपना रूप भी दिखाई पड़ रहा है हवा को रूप नहीं दिखाई और फिर क्या जल जल में चार है शब्द भी है कलकल स्पर्श भी है रूप भी है देखा जाता है और रस भी है और पृथ्वी में ये पांच चारों गुण और एक अपना सुगंध भी है उसी तरह से पांचों रस मधुर रस में संतों की निष्ठा दासियों की सेवा सखाओं की ममता युक्त असंकोच सेवा और वात्सल्य का पाल्य ज्ञान तारण भाष्य और अपना निजंग के द्वारा सेवा अपने समस्त अंगों के द्वारा कृष्ण की मधुरमयी आकर्षित सेवा ये गोपियों में है मधुर रस में है इसलिए मधुरस के द्वारा यदि कोई कृष्ण को प्राप्त करता है गोपियों के अनुगत में उसकी कृष्ण प्राप्ति पूर्ण है अन्यथा पूर्ण नहीं है गोपियों की सेवा परिपूर्ण है इसलिए गोपियों के अनुगत में जो कोई मधुर रस से कृष्ण की सेवा को पत्य भाव से पाता है तो उसकी कृष्ण प्राप्ति पूर्ण रूप से होती है इसीलिए कहते हैं श्रीमद् भागवत में राय रामानंद जी का है भक्ति मई भक्ति ही भूता नाम अमृतवाय कल्पते दृष्टा जदासी स्नेह स्नेहो भवती नाम मदा दृष्टा जद आसीन मत स्नेहो भवती नाम मदा मई भक्ति ही भूता नाम प्राणी मात्र के लिए मेरी भक्ति अमृत स्वरूप है अमृत माने क्या अस्वादनीय मोक्ष भी को भी अमृत कहा जाता है किंतु मोक्ष से भी कोटि गुण श्रेष्ठ प्रेमामृत वो भी ब्रज प्रेमामृत गोपी प्रेमामृत तो जो लोगों जिन लोगों को मेरी भक्ति हुई है रति हुई है उनके लिए तो भक्ति अमृत के समान है किंतु सौभाग्यवस्त दृष्टया माने सौभाग्यवस्त जत आसीन मत स्नेह उस भक्ति रति से प्रेम स्नेह स्नेहमयी भक्ति चित्त द्रवता रूप जहां भक्ति आई जैसे कि गोपियों को है कहते हैं कि भौती ना आप लोगों को है इसलिए बहुत जल्दी से ही हमारा मिलन होगा ये कहां की बात है कुरुक्षेत्र की बात है जबकि कृष्ण से गोपियां मिली और उन्हें लगी गृह में तड़पने लगी और विशेष करके अपना तत्व ज्ञान दिया जिसे सर्वथा तुम्हारे हमारा मिलन विरह नहीं है उस समय गोपियों को कृष्ण ने इसको बताया तुम लोगों को साधारण भक्ति नहीं अमृत नहीं उससे बढ़कर के स्नेहमयी भक्ति है इसलिए समझोगे अब मैं तुमसे मिल ही लिया अब हमारा जरूर ही मिलन होगा अर्थात मैं वृंदावन में जाऊंगा वृंदावन के करते छोड़ करके तुम जा नहीं सकती भाई वृंदावन में हमारा तुम्हारा मिलन होगा और कृष्ण उनके मनोरथ पर चढ़ करके वृंदावन में कुरुक्षेत्र से वृंदावन में गए कृष्ण प्रतिज्ञा
दीर्घ सर्वकाल कृष्ण की एक प्रतिज्ञा है, जो जैसा मेरा भजन करता है मैं उसको अनुरूप में प्रतिदान देता हूं। क्या है, जे जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, ऐसे प्रेमेर अनुकूल अनुरूप ना पारे भजिते, अतएव ऋणी कहे ऋणी कहे भग। प्रतिज्ञा तो उन्होंने की, किंतु प्रतिज्ञा के अनुरूप गोपियों के अनुरूप वो भजन नहीं कर सके, उनको प्रतिदान नहीं किया, इसलिए श्रीमद् भागवत में न पारे हम निर्बद्ध संयुजन श्लोक कहा गया। मैंने इसकी व्याख्या तो की है, किंतु सनातन गोस्वामी जी वो क्या रसायन में इसकी व्याख्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा इसका एक हिंट दे रहे हैं। न पारे हम निरवद्ध संयुजन सुस्वाद कृतम विबुधा दुषापि वह मां भजन दुर्जर गृह श्रृंखला संवृश्य तदव प्रतिजातु साधना। हे गोपियों, मेरे सहित मेरे साथ तुम्हारा जो प्रेममय संयोग है, मिलन है, उस मिलन में तुम लोगों ने दुष्कर दुस्तर्ज गृह की श्रृंखलाओं का छेदन कर लोक धर्म वेद धर्म कुल धर्म गुरुजनों की बातों को उल्लंघन कर हमारा तुम लोगों ने सब प्रकार से भजन किया, उसका प्रतिदान करने के लिए मैं देवताओं की जैसी आयु पाकर के भी मैं शरीर को तुम्हारा वह ऋण मैं चुका नहीं सकता हूं। तुम्हारा साधुत्व ही हमको इस ऋण से मुक्त कर। अंडरस्टैंड, तुम बहुत साधु हो, इसलिए तुम साधु होने के नाते तुम ही हमको उस ऋण से मुक्त कर सकती हो। मैं अपने क्रियाओं के द्वारा देवताओं का जन्म लेकर के भी हजारों लाखों उनके जन्मों में भी तुम्हारे ऋण से मैं स्वयं मुक्त नहीं हूं, तुम ही मुक्त कर सकती हो। अब देखिए, इस प्रकार से ब्रज देवियों की भगवत विषय जो भाव है, माधुर्य भाव है, उसके महात्म को वर्णन कर रहे हैं। गोपियों के प्रेम का, उनके भाव का क्या महात्म है, कितना ऊंचा उनका प्रेम है, ऊंची प्रेम सगाई की,
सबसे ऊंची प्रेम सगाई,
हाँ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, इससे बढ़कर के और कोई नहीं है, विशेष करके गोपियों जैसा, उसका महात्म वर्णन कर रहे हैं। इस समय अधुना उनका प्रेम, गोपियों का प्रेम विषय भाव और आश्चर्यजनक उनके भावों की महिमा को बतला रहे हैं, जिसको स्वयं भगवान अपने मुख से कह रहे हैं। और लोग जो कह रहे हैं, भक्त लोग, वो तो कहेंगे ही, सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन कर रहे हैं, नारद जी वर्णन करेंगे, गोस्वामी लोग हमारे वर्णन करेंगे, वो भी उनके नित्य परिकर हैं, रुक्मंजरी प्रभृति, तो ये वर्णन करेंगे पीछे। किंतु कृष्ण स्वयं अपने मुख से उनका वर्णन कर रहे हैं, ये कुछ अधिक महत्व का है। उसमें कृष्ण रास क्रीड़ा हुई, सब गोपियां आईं और गोपियों का सौभाग्यमत और राधा जी का मान देख करके देखा, ये तो ऐसे तो रास होगा नहीं, रास से अंतर ध्यान हो गए। इसलिए राधिका जी का मान प्रसादन करने के लिए, मान की रक्षा करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए
और गोपियों के सौभाग्य मद को चूर्ण करने के लिए। अंतर ध्यान होने के बाद में फिर आविर्भूत हुए, उसका वर्णन हमने किया है मनमथ मनमथ रूप में। और उस समय में गोपियां उनसे चार प्रश्न करती हैं, चार या तीन, वो चार प्रश्न क्या थे? कोई प्रेम करने से प्रेम करता है, अंडरस्टैंड, कोई प्रेम करने से तो प्रेम करता है, कोई प्रेम करे या न करे तो भी वो प्रेम करता है, और कोई प्रेम करे न करे वो किसी को प्रेम नहीं करता। हे श्याम, आप बतलाइए इनमें से कौन से आप हैं? तो कृष्ण मुस्कुरा दिए और ताल बहाना करके बोले, मैं इनमें से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। प्रेम के बदले में जो प्रेम करता है वो तो बनिया है, और जो प्रेम की अपेक्षा नहीं रहता है, कोई प्रेम न करे और करे उसको वो यदि प्रेम करता है, ये बहादुरी है, ये माता पिता है और तुम लोग खुद हो गोपियां, मैं करूं ना करूं तुम लोग करती है, विशेष करके माता पिता और गुरुजन। और प्रेम करने पर भी जो प्रेम नहीं करता वो क्या है? चार प्रकार के, आत्माराम, आप्तकाम, द्रोही और अकृतज्ञ, चार। कहिए मैं इनमें से कुछ नहीं, तुम्हारा प्रेम बढ़ाने के लिए अंतर ध्यान हो गया, किसी को कुछ पैसे मिल जाए, मणि मिल जाए और वो गुम हो जाए तो उसके लिए और अधीर हो उठता है, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारे पास ही में खड़ा तुम्हारा ये विरह की गीत सुन रहा था, तुम्हारा प्रेम बढ़ाने के लिए किया। बड़ा सुंदर वो विचार। इसके बाद में कृष्ण इनके भावों को सुन करके कह रहे हैं कि देखो प्रियाओं, तुम मेरे प्रिया हो, मैं तुम्हारा प्रियतम हूं, हम में दोष मत देखना, दोष मत देखना, मैं तुम्हारे ऋण को कभी भी नहीं चुका सकते, नहीं चुका सकता, ना पा रहे हम। हे प्रियाओं, हमारा जो संयोग तुम साथ में मिलन है, निरवध्य परम पवित्र परम निर्मल है। स्मार्ट लोग उनके प्रेम में जो काम का गंध आविष्कार करते हैं, काम गंध देखते हैं कि ये श्रुतियों के विपरीत कृष्ण से विवाह न होने से भी मिली हैं, उनके साथ में रास इत्यादि किया, यह सर्वथा खराब है, ये काम है, भोग है। किंतु मैं कहता हूं परम निर्मल है तुम्हारा और हमारा, तुमने सब प्रकार से दुष्छेद वेद धर्म इत्यादि को छोड़ करके हमारे पास में आई हो, यह मिलन साधारण है, सब प्रकार से पवित्र है, अर्थात संयोग सर्व निरपेक्ष, कापट, इसमें कपटता नहीं, अपने भोग की कामना नहीं, सूत्रम परम निर्मल प्रेम है, और यह दोष निर्दोष है तुम्हारा हमारा मिलन, जीव का और कृष्ण का मिलन, जैसे गोपियों का मिलन है वैसे जीव का भी यही परम कर्तव्य है कृष्ण के साथ में मिलन। और यह संयोग मेरे विषयक है, और एकाग्रता अवलंबन लक्षण किंबा मंगल लक्षण बोलिया, तुम लोग एकाग्र रूप में हमारे में एकनिष्ठ है, हमारे अतिरिक्त और किसी में नहीं, इस मिलन की कोई भी निंदा नहीं कर सकता, यदि करता है तो वो स्वयं निंदनीय है, वो प्रेम का वो नहीं जानते हैं। इसके द्वारा स्मृति शास्त्र में जो स्मृति शास्त्र के जो जानने वाले विज्ञ हैं, काम आदि जो वो लगाते हैं जिनमें काम दोष है, संभोग का दोष है, वो निराकृत हुआ। कृष्ण स्वयं धर्म के मूल हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। प्रत्युत निरवध संयोग हेतु मद विषय काम बोलिया, वो मेरे विषय काम है, इसलिए कृति कृष्ण प्रीति इच्छा धरे प्रेम ना, वो काम नहीं है बल्कि प्रेम है, वही यथार्थ काम है। वो यदि काम आ जाए तो हमारा हृदय रोग भी संपूर्ण रूप से दूर हो जाएगा। अर्थात काममय रूपे संयोग जो है हमारा मिलन, काममय रूप में प्रतीत होने पर भी ऐसा प्रतीत दिखता है किंतु निर्मल प्रेम है, अंडरस्टैंड। अतः यही संयोग श्री कृष्ण ने प्रेम परिपाक पिलास दिशा, गोपियों का जो प्रेम और संयोग है वह प्रेम परिपाक परिपक्व प्रेम का विलास है, अर्थात उपकरण है, इसको पहले बतलाया गया, अब कुछ और बतला रहे हैं। मैं देवताओं की जैसी परिमित परमायु पाकर के भी उनका जन्म मनुष्यों से भी एक दिव्य जन्म अधिक होता है, करोड़ों वर्ष अधिक, ऐसी आयु पाकर के भी तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, क्यों? तुम्हारा कृत्य जो है असाधारण है, असाधारण साधारण नहीं है, सुतरंग साधु है, धर्मयुक्त है, धर्म है, किसी भी दूसरे साधुत्व के द्वारा इसका प्रतिदान नहीं किया जा सकता है। क्या कहूं, साधु कृत्य जो तुम्हारा जो प्रेममय संयोग है हमारे साथ में मिलन है, क्या है? कुलबधुत्व, गृह की श्रृंखलाएं, बाल बच्चों का पालन पोषण, पति की सेवा करना, घर को सजाना, सब कुछ ठीक काम करना, इत्यादि जो व्यवहार हैं, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है, ऐसे गृह संबंधी कार्यों को छोड़कर संपूर्ण पति पुत्र और वेद धर्म पे जो कुछ है सबको छोड़कर हमारा तुम लोगों ने भजन किया है, हमारे प्रति एकनिष्ठ हुई है, मैं तुम्हारे प्रति एकनिष्ठ नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारा वो जो साधु कृत्य है हमारे बदले हमारे लिए तुमने सब कुछ छोड़ा है, इसका प्रतिदान मैं करने में कभी भी सफल नहीं होगा, कभी हमारे साध्य की बात नहीं, अर्थात हमारा चित्त बहुनिष्ठ है और तुम्हारा चित्त कैसा है, हमारे में एक निष्ठ है, मैं एक, तुम लोग एकनिष्ठ हो, मैं बहुनिष्ठ हूं, मैं किसी को छोड़ नहीं सकता, अतएव तुम्हारा साधु कृत्य ही हमारे लिए मंगलदायक, उसी से मैं मुक्त होऊंगा, तुम यदि मुक्त दया करके कर दो तभी मुक्त, अन्यथा मैं मुक्त नहीं होता मैं प्रतिदान से। और एक यहां पर सनातन गोस्वामी अर्थ कर रहे हैं स्व स्वसाधु स्वसाधु कृत्य, स्व स्व माने सु और स्व, कृष्ण एक दूसरा अर्थ कर रहे हैं, तुम लोग देखो सुष्टु असाधु कृत्य रूप मद विषय निष्ठुर वचन बोला है, सु अत्यंत जो नहीं कहना चाहिए ऐसे निठुर वाणी हमारे प्रति तुम लोगों ने व्यवहार किया है, क्या तुम लोगों ने मुझे कहा ये तुम महाभूत हो, धूर्ते प्रजंद तने न सुस्त धूर्त हो, एटा कीर्तन करे दो, तुम्ही करो तुम्ही करो, जय जय राधा रमण हरि बोल।
Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol.
महाद्भुत कहो, गोपियों ने कृष्ण को कहा महाद्भुत, तुम्हारा मन एक और वचन एक, तुम्हारा ईशत मधुर हंसते हुए जो तुम्हारा मुख है स्मित मंद हास्य युक्त, वह नारियों के हृदय को बेद करता है, वो गर्ल विष है, वह विष तुल्य है। जिस प्रकार से एक ब्याह मधुर बंसी बजाकर हिरणियों का वध करता है, तुम उसी प्रकार से मधुर बंसी बजाकर और अपने रूप के द्वारा हमारा वध करते हो। तुम्हारी बंसी ध्वनि भी उसी प्रकार से वध करने वाली है। क्या कहूं, जन्मात्र से ही तुमने पुतना का वध किया, जन्मात्र से ही, और जन्म से ही नारी वध करना तुम्हारा जीवन का व्रत हो गया, नारियों का वध करना ही तुम्हारे जीवन का व्रत है। तुम महाचोर चूड़ामणि हो। बाल्यकाल में गोपियों के घर में दूध मक्खन इत्यादि की चोरी की, उनके मनों की चोरी की, किशोर अवस्था में कात्यायनी व्रत परायणा कुमारियों का वस्त्र लेकर के चोरी किया, मर्यादा प्राप्त कुल लल्लाओं का पातिव्रत धर्म को भंग किया, और दुशील शेखर हे केतव बंधु कितवेंद्र मने ठगों के सरदार, इस प्रकार से हमको कितनी गालियां तुम लोगों ने दी, और मैं तुम्हारे इन वचनों को सुनकर के महारस सिंधु में की तरंग मालाओं में मैं डुबकी लेता हूं। अतएव साधु कृत्य की रूपे निष्पन्न हो, इसलिए तुम्हारे प्रति हमारा साधु कृत्य कैसे निष्पन्न होगा। सत्य ही सत्य बात है, यह सच बात है। मैं तुम्हारा यह साधु कृत्य में कभी भी ऋण से उन्मुक्त नहीं हो सकता, समर्थ हूं। वास्तव में ब्रज सुंदरियों के सहित निरंतर क्रीड़ा के लोभ से इस प्रकार से वचन भंगी का विस्तार जानना चाहिए। वो किस लिए कर रहे हैं कृष्ण, और भी भविष्यत में उन लोगों के साथ में प्रेम पूर्वक इन लीलाओं के लिए जो और भी लीलाएं ऐसे ही होंगी। इसलिए साधु कृत्य, इस साधु कृत्य का ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। अंत में यही भाव, गोपियों का कृष्ण को गाली देना और ऐसी बातें जो उन्होंने कहा है, वेद की स्तुतियों से भी उनका मन हरण नहीं होता किंतु इससे उनका मन हरण हो जाता है। इसलिए गोपियों का प्रेम ऐसा है जिसका कोई उदाहरण नहीं है, इसलिए गोपी प्रेम की ध्वजा है। इसलिए गोपियों की यहां पर स्वयं कृष्ण अपने मुख से ही प्रतिष्ठा प्रशंसा कर रहे हैं। और भी है देखेंगे कब। अभी ड्रामा प्ले होगा, उसके साथ उसके प्लेयर लोग रेडी हो जाए, दे शुड बी रेडी आफ्टर ट्रांसलेशन दे कैन बिगिन। I am very satisfied and happy that you
generously
contributed
generous
gathered contributed so that we can help him so much. Later on I will tell you how much we have received, but we have received and I am satisfied.
Now Sri Royal Ananda is giving us an example of how we can understand that Madhurya Rasa is superior to all. We know that this material world is composed of five gross elements. Akash, space.
Your permission.
This is most
we
subtle.
Can stay with most
after
subtle.
That,
yes,
air,
we go to Mathura.
Yes, fire, yes. Then water, and then earth. So space has one quality by which it can be perceived. And that is
sister
will
put there, yeah. And then perhaps you can come and take
more gross
elements.
Is air.
And time to time you
so
can
air how he has the qualities of sound but also touch. The next element is fire. It has sound and touch and one extra quality that
no.
is warm.
No.
Then water, it has all the qualities of fire plus an extra quality that is taste.
Maybe something has to go to
and
the
finally earth, it has sound, touch, form, taste,
for
and
I think
its own quality, fragrance, sharpness, partial, rupa, rasa, gandha, five qualities. So in the same way, all the elements of the other rasas are included in Madhurya Rasa. For example, the quality of nishtha, attentiveness to Krishna, giving up all other things, which is Avshantaras is there, the seva which is present in Dasya Bhav, the feelings of intimacy and equality, the lack of inhibition, which Asankoch Bhav, the lack of inhibition, which is present in the friend's mood, the mood to nourish, protect, and chastise Krishna, which is present in Vaitsalya mood, plus its own exclusive quality, to serve by all the limbs of the body, that is also present in Madhurya Rasa. So, because all the qualities of all the other rasas are present in Madhurya Rasa, therefore, the prapti, or the attainment of Krishna in this mood, is prana, it is perfect and complete. Therefore, if someone would do bhajan, render devotional service in the anugatya of the gopis of Vrindavan, their attainment of Krishna will be purna, perfect and complete. So to illustrate this point, Sri Vairagananda has given another verse from Srimad Bhagavatam, Mayi bhaktihi bhutanam amritatvaya kalpate distaya nasimat sneha bhavatinam manapanaha. Krishna is saying here, amritatvaya kalpate, for all living entities, then bhakti, devotional service to me, is amrita sarup. It is the embodiment of all nectar. Sometimes moksha, liberation, is called amrita. But this is, this brings one to Premamrita, the nectar of transcendental love. So it's far superior. But then Krishna said, Dista Vadasinam Sneha. Dista. By great fortune, by good fortune, you have Sneha for me. Beyond prey, Ragatmik Bhav. And by this love I am controlled, and therefore, because you have this love for me, very soon we will be united together. When did Krishna speak this? He spoke this at Kurukshetra. Krishna had explained Tattva Gyan to the gopis of Vrindavan by saying, there cannot be any separation between us because I am all pervading. But the gopis were not satisfied. So finally Krishna said, this Bhavatina Madhapana. You should know that because of the power of your love, I will definitely return to Vrindavan very soon. So Rai Ramananda continued after giving this example that Krishna's promise to reciprocate with everyone by uttering the verse Yayatama Prapatente. But Krishna cannot reciprocate with this praying of the gopis. Therefore he said, Naparihante Ravatya Samyutam Swasadu Krityam Vibhudaya Shapiva Yamama Jandutche Gay Sinkala Samarshitadva Pratiyatu Sarduna. This verse has been explained by Srila Sanatan Goswami in his Bhakti Rasayan, which is part of Shibre Bhagatamrita. There in his commentary, he explains that Krishna says, O dear gopis, our loving meeting is pure. You have broken all the dehashrika, all the shackles of household life, and you have transgressed all dharma, all religious principles, for the sake of meeting with me. And therefore, I cannot repay you. So Krishna, Tadva Patiya to Sadhana. Krishna said, only by your sadhu vyavaha, by your very liberal behavior, by your own nature, I can be, my debt to you can be liquidated. Otherwise, if I will serve you for thousands and thousands of lifetimes, even if I could have a lifespan equal to the vast duration of life of the great demigods, then still I could never repay you. So what kind of mahatmya, greatness is there in the praying of the gopis? Nothing is higher than this. It is a matter of great astonishment that in Srimad Bhagavatam, different types of praying are being glorified. Shukadeva Goswami has described gopis praying. Narada Muni and others, they've also described. But here, Swayam Bhagavan Shri Krishna himself, by his own lips, he is glorifying the extent of Gopi's love. When did Krishna speak this verse? During Rasa Krita, during Rasa Lila, Krishna, he disappeared to subdue the mind of Srimati Radhika and to please her, and to subdue the Sobhagya Maj, the intoxication of pride that came from the other gopis' feelings of unparalleled good fortune. So Krishna disappeared, but after seeing the separation of gopis, he appeared again. And when he appeared, the gopis posed four questions to Sri Krishna. They asked, they said to him, Krishna, some persons, they love someone else if that person loves them in return. This is the first category. Then second category, some persons, they extend their love to another person whether that person loves them or not. The third category is there's a person and someone may love him or others may not love him. But under any circumstances, he does not express or extend his love to anyone, whether they love him or not. So, Hesham, which type of lover are you? In these categories, which one are you? So then Krishna smiled and said to them, I am not in any of these categories. In the first category, that person who reciprocates love with others who love him. So that person is like a merchant, is a businessman who gives in proportion to what he's getting. So this is not love at all. The second category, those who give love, whether the object of their love is expressing love for them or not. I am not in this category. Who is in this category? Those who are Gurujan, those who are superiors, and they bestow love on their juniors, whether they reciprocate or not. For example, mother and father, they give love to their children, whether the children reciprocate or not. And Krishna said, and gopis, you are also in this category. Because when I disappear from you, you still express your love for me. So then, the third category, those who never love others, whether they are loved or not. This is divided into four types. Those who are atmaram, self-satisfied, like Shukadeva Goswami, those who are aptakam, all their desires are fulfilled. Example is Janak Maharaj. Those who are guru drogi, they go against their guru jana, who are their well-wishers, they actually act against them. And the fourth category, akritagya, those who are simply ungrateful. So Krishna, I am not any of those. So then why did you disappear? Krishna said, I disappeared to so that in my absence, your attachment for me, your absorption in me would increase. So please, don't be angry with me. You are my beloved and I am your lover. Then, after speaking this, Krishna spoke this verse, Na pariyam niravati samyam swasarvitam vibhudaya shatra. It means, niravati samyam. Our samyog, our meeting together is niravatya. It means completely pure. Completely pure. Those who are smarta, they follow Smriti Shastra. In Smriti Shastra it says that a woman should not leave her husband if she will be with another man, but this is only calm. But here Krishna is saying, our meeting is completely pure. You have sacrificed everything. For what? No calm in this, only for my happiness. Your nishtha is ekanishtha. Your love is completely resting in me, not in anything else. No one can criticize this. Because if Krishna is the object of love, then it can never be called calm. As stated in Shri Chaitanya Charita, Atmanirya Prativajana Tarivale Kram, Krishna Kadhyari Kicha Dhari Prem. If someone does something to the satisfaction of their own senses, it can be called calm. But if someone acts exclusively for the satisfaction of Krishna's senses, then it must be praying. So Krishna confirmed, oh, you are leaving everything for me is nirmam prem, completely pure, mature prem vilas. And therefore, if I served you for thousands of years for the duration of the life of the demigods, I'm still indebted. You have left your kula madhutva, your chastity, your behavior as an ideal lady in your dynasty. You've given up the service of your husbands, children, and everything. Who can give up this? It's extremely difficult to renounce. But you have left everything for me. And on the other hand, I cannot leave anyone for you. I cannot leave even the most insignificant of my devotees. So when will I be released from this debt to you? Only when you release me by your own good quality, by your own sadhutva, your pure nature, then I can be released. Otherwise, it can never happen. So this is one mood in the verse. Srila Sanatana Goswami Pad is explaining the same words spoken by Krishna, but in a completely different mood. Here, Krishna said, Swa sadhu kritya vibhushadaya shapiva. That you have acted, you have done sadhu kritya, most liberal, generous, open-hearted, pure behavior. So here, swa sadhu, your own very pious activities. The sandhi, that means the joining of the prefix and the word in Sanskrit. Swa and sadhu can be separated in another way. It becomes su and asadu. Not swa sadhu, your good behavior, but su asadu, your very terrible behavior. Yeah? In other words, hey gopis, your behavior is very bad because you are so cruel to me. You do su asadu kritya, very despicable behavior towards me. What is that? You are very cruel to me. You call me mahadurt. You say I'm a rascal. You say, oh Krishna, your mind, your heart, and the words that you say, in other words, the words that you speak and how you feel inside, they're completely different, so you have duplicity. You say, oh Krishna, your smiling face is like a poison which enters into the hearts of all young women. And you are like a hunter, just as a hunter that plays on a flute, only to lure deer, innocent deer, and kill them. So in the same way, you play on your flute, and you lure innocent women, so that you can associate with them. And your behavior of killing women, this is not surprising, because this is a habit that you've had since your very birth. When you're only 6 days old, you killed Putana. You are Mahachur Chudamani. You are the crest jewel of all thieves. In your childhood, when you're only a baby, you would go door to door stealing butter from others' houses. And then when you became somewhat older, when the gopis were bathing in the Jamuna, you came and you stole all of their clothes. You are Dushyul Sekar. That means the crest jewel of those who have bad character. You are Kitavendra. You are the king of all cheaters. So Krishna is saying, su asadu kritya, su asadu kritya. You insult me in so many different ways. But